आइए अब हम मेजी पुनः स्थापना पर चर्चा करें। सम्राट के अधिकारों की पुनः स्थापना और शोगुन के शासन का अंत जापान के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है, जिसके साथ जापान एक नए युग में पदार्पण किया और आधुनिकता का बीजारोपण हुआ। अगर पुनर्स्थापना नहीं होता तो निश्चित रूप से जापान पश्चिमी साम्राज्यवादियों के चुंगल में आबाद हो जाता और उसका राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास असंभव होता। यही कारण है कि मेजी पुनर्स्थापना का जापान के इतिहास में एक विशिष्ट स्थान है, क्योंकि इसने उसे पाश्चात्य देशों के साम्राज्यवाद के चुंगल में फंसने से बचा लिया। अमेरिका द्वारा जापान का दरवाजा खोले जाने के बाद विदेशियों का आगमन शुरू हुआ और उनके दबाव के फलस्वरूप जापान में विभिन्न प्रतिक्रियाएं शुरू हुई। जापान के पुरानपंथी और रूढ़िवादी पश्चिमी देशों के साथ बढ़ते हुए संबंध का विरोध कर रहे थे, लेकिन इसी समय जापान में दूसरी विचारधारा का अभ्युदय हुआ, जिसने प्राच्य नैतिकता और पाश्चात्य विज्ञान के समन्वय पर बल दिया। यह वर्ग पश्चिम का मुकाबला करने के लिए उसी के साधनों को अपनाना चाहता था। मेजी पुनर्स्थापना इसी प्रवृत्ति का परिणाम थी। आरंभ में चीन की तरह जापान ने भी विदेशियों का विरोध किया, परंतु बाद में वहां के अधिकांश निवासी पुरानी परंपराओं और अंधविश्वासों को त्याग कर आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ना चाहते थे। वे विरोधाभास की स्थिति को छोड़कर रूढ़िवाद और आधुनिकता के बीच आधुनिकता का समर्थन कर रहे थे। मेजी पुनर्स्थापना का एक बहुत बड़ा कारण सामंती व्यवस्था के दोष हैं। 19वीं सदी के मध्य तक जापान में सामंती प्रथा की प्रधानता थी और राज्य के प्रमुख पदों पर कुछ सामंती परिवारों का एकाधिकार था। शक्तिशाली जागीरदार भी अपने क्षेत्र में स्वतंत्र सामंतों की तरह शासन करने लगे थे। सामंती प्रथा ने सैनिक वर्ग को जन्म दिया, क्योंकि हर सामंत राज्य पर प्रभाव डालने के लिए अपने पर सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न करता था। दूसरी ओर सामंतों पर सम्राट का कोई अधिकार नहीं था और उनके समक्ष वह अपने को असहाय महसूस करता था, क्योंकि अगर सामंत चाहें तो राजतंत्र को भी समाप्त कर सकते थे। वह तो दैवी अधिकार का सिद्धांत ही था, जिसकी बदौलत राजा टिका हुआ था। जिस समय जापान का दरवाजा पश्चिमी राष्ट्रों के लिए खुला, उस समय तोकुगावा शोगुनों का शासन था। जापान के अन्य सामंती घराना शोगुन के शासन से असंतुष्ट था और उसकी शक्ति को समाप्त करना चाहता था। विभिन्न सामंत कुलों को परास्त कर जापान में तोकुगावा शासन की नींव डाली गई थी, जिससे पारस्त घरानों के हृदय में प्रतिशोध की अग्नि धधक रही थी। दूसरी ओर शोगुनों ने सामंतों पर नियंत्रण रखने के लिए कई तरह के कानून बनाए। उन्हें किला बनाने, जहाज बनाने, सिक्का ढालने तथा शोगुन की अनुमति के बिना शादी ब्याह करने पर रोक लगा दी गई। इससे भी असंतोष की भावना बलवती हो रही थी। राज्य के बड़े बड़े पदों को तोकुगावा परिवार के सदस्यों के लिए सुरक्षित रखा जाता था और चोसु, सत्सुमा और तोसा परिवार के सदस्य इन पदों से वंचित थे। इस भेदभाव की नीति ने उनकी असंतोष की अग्नि को और भी प्रज्वलित कर दिया। शोगुन शासन का एकमात्र उद्देश्य था अन्य सामंती घरानों को आर्थिक दृष्टि से पंगु बनाना, और वास्तव में धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति शोचनीय हो गई, जिससे उन्होंने सैनिकों को हटा लिया। सैनिकों के सामने बेकारी की समस्या उत्पन्न हुई और उनमें असंतोष बढ़ता गया तथा जीवन निर्वाह के लिए उन्होंने गलत रास्ता अपनाया, जिससे अव्यवस्था और बढ़ी। ये सैनिक भी प्रचलित व्यवस्था में परिवर्तन के पक्षपाती हो गए। 19वीं सदी में व्यापारिक प्रगति के कारण एक व्यापारी वर्ग का जन्म हुआ, जो आर्थिक दृष्टिकोण से तो सामंतों से आगे था, परंतु सामाजिक प्रतिष्ठा उनकी बिल्कुल नगण्य थी। अतः स्वभावतः अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए वे सामाजिक स्थिति में परिवर्तन चाहते थे। कृषक वर्ग भी सामंती शोषण का शिकार हो रहा था, परंतु अब उनमें राजनीतिक जागरण आया और वे सामंती व्यवस्था के बोझ को ज्यादा दिन तक ढोने के लिए तैयार नहीं थे। शोगुन व्यवस्था के खिलाफ उनमें भी विद्रोह की चिंगारी भर की, जिसने आगे चलकर भीषण ज्वाला का रूप धारण कर लिया। इस प्रकार जापानी साम्राज्य का प्रत्येक वर्ग शोगुन व्यवस्था से असंतुष्ट था, और ऐसे ही समय में जापान में विदेशियों का प्रवेश हुआ, जिसने स्थिति को और भी अधिक विध्वंसक बना दिया। और इसके लिए वे तत्कालीन शासन को ही जिम्मेदार समझते थे, और उनके लिए अब एक ही विकल्प था, शोगुन शासन का अंत करना, क्योंकि उनके विचार में शोगुन शासन की अदूरदर्शिता के कारण ही जापान की स्वतंत्रता और संप्रभुता खतरे में पड़ गई थी। अतः उन्होंने सम्राट को अपनी गतिविधि का केंद्र बनाया और शोगुन शासन का विरोध किया। उनका नारा था, बर्बरों को निकालो, शोगुन को हटाओ और सम्राट की शक्ति को बढ़ाओ। सम्राट चीशु सामंतों के प्रभाव में आकर 25 जून 1863 ईस्वी तक विदेशियों को जापान से बाहर निकलने का आदेश शोगुन को दिया। चोशु सामंतों ने अपने कर्मचारियों को शिमोनोसेकी जलडमरू मध्य में आने वाले विदेशी जहाजों को नष्ट करने की आज्ञा दी। उसी दिन एक अमेरिकी जहाज को नष्ट कर दिया गया, और अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की, और शोगुन स्थिति को संभालने में असमर्थ रहा। सत्सुमा सामंतों के जुलूस में एक अंग्रेज की हत्या कर दी गई, जिसके लिए ब्रिटेन 1,00,000 पौंड हर्जाना मांग रहा था। दोनों देशों में दुश्मनी पैदा हुई और अंग्रेजी जहाजों ने जापान पर गोलाबारी कर काफी क्षति पहुंचाई। चोशु और सत्सुमा सामंतों को विदेशियों के समक्ष अपमानित होना पड़ा, इसलिए उन्होंने एक मिलीजुली सेना संगठित की, और सामान्य जनता की सेना में आ जाने से सामंतशाही के अंत का पूर्व सूचक साबित हुआ। 7 मार्च 1866 ईस्वी को चोशु और सत्सुमा ने एक गुप्त संधि के द्वारा शोगुन शासन का अंत करने का निश्चय किया। 3 जनवरी 1868 ईस्वी को सत्सुमा और चोशु की फौजों ने शाही महल पर कब्जा कर सम्राट के पुनः शक्ति की स्थापना की घोषणा की। सम्राट ने मेइजी का उपनाम धारण किया, और इसलिए इस घटना को मेइजी पुनर्स्थापना का नाम दिया गया। शासन व्यवस्था को चलाने के लिए 1868 ईस्वी में एक विधान बनाया गया, जिसके अनुसार सरकारी कार्यों का निर्णय जनमत के आधार पर करने का निश्चय किया गया, तथा सभी वर्ग के लोगों से इस योजना को सफल बनाने की अपील की गई। पुरानी प्रथाओं का अंत तथा नया ज्ञान अर्जन पर विशेष बल दिया गया। कई परामर्शदाता नियुक्त किए गए, जिन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में विकास कर जापान को आधुनिक राष्ट्र बनाने का प्रयत्न किया। जापान का आधुनिकरण और पश्चिमीकरण की ओर अग्रसर होने के कारण मेजी पुनर्स्थापना का काफी महत्व है। सामंती प्रथा का अंत तथा राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन में परिवर्तन मेजी पुनर्स्थापना का महत्वपूर्ण परिणाम है। सामंती व्यवस्था के उन्मूलन से ही जापान की प्रगति का मार्ग खुल गया। सभी सामंतों ने सम्राट की संप्रभुता और संरक्षण को स्वीकारा, तथा जापानी एकता को पुष्ट बनाने के लिए अपनी जागीरें सम्राट को सौंप दी। पुनर्स्थापना ने जापान को विदेशी साम्राज्यवाद के चुंगल में फंसने से बचा लिया। वहां राष्ट्रीयता का विकास हुआ, और जापान विदेशियों के इरादे से सतर्क हो गया। अब तो वहां जापान स्वयं ही साम्राज्यवाद के राह पर आगे बढ़ा। पुनर्स्थापना के बाद जापान के शासन को व्यवस्थित किया गया। शासन चलाने के लिए राष्ट्रीय सभा का संगठन किया गया, और नए संविधान में नागरिकों को अनेक अधिकार प्रदान किए गए। संसद मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ, तथा सेना का भी नए ढंग से संगठन हुआ। इस दृष्टिकोण से भी पुनर्स्थापना का विशिष्ट महत्व है। इसके कारण ही जापान में साम्राज्यवादी भावना का विकास हुआ, तथा जापान का तेजी से औद्योगिक विकास हुआ, जिसके फलस्वरूप जापान एक शक्तिशाली देश बन गया और साम्राज्यवाद के दौर में पश्चिमी देशों के साथ शामिल हो गया। पुनः स्थापना के बाद विदेशियों के संपर्क में आने से ही जापान की प्रगति संभव हो सकी, और जापानियों ने पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृति का अनुशीलन कर औद्योगिक, व्यापारिक और राजनीतिक प्रगति कर अपने आप को पश्चिमी राष्ट्रों के समकक्ष खड़ा किया। पाश्चात्य ढंग पर सेना का संगठन किया गया, नए नए वैज्ञानिक अस्त्र शस्त्र बनाए गए, शिक्षा, साहित्य तथा विज्ञान के क्षेत्र में भी प्रगति हुई। इस प्रकार जापान नए युग में प्रवेश कर शीघ्र ही एशिया का महान देश बन गया। फिर भी यह बात ध्यान देने योग्य है, पुनर्स्थापना के बाद जापान का प्राचीनता से संबंध नहीं टूटा और आधुनिकता की आधारशिला प्राचीनता को ही अपनाया गया। जापान की विदेश नीति में परिवर्तन भले ही हुआ हो, लेकिन गृह नीति ज्यों की त्यों बनी रही। पश्चात देशों के समकक्ष बनने के लिए जापान ने हर क्षेत्र में प्रगति की, लेकिन वहां अब भी राजतंत्र ही कायम रहा और शासन में सामंतों को भी स्थान दिया गया। अतः पुनर्स्थापना के बाद भी जापान का प्राचीनता से संबंध बना रहा, लेकिन इसके साथ जापान ने एक नए युग में प्रवेश किया। यही कारण है कि जापान के इतिहास में मेजी पुनर्स्थापना का काफी महत्व है।